सागर धर्मामृत लेक्चर नंबर 2। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सेवाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं। अथ नत्वार्हतो क्षोण चरणान् शमनानपि सद्धर्मरागिणां धर्म सागाराणां प्रणेशते। यह सागर धर्मामृत नाम ग्रंथ है जिसकी रचना पंडित आशाधर जी ने की हुई है। हम अभी आए हैं पृष्ठ संख्या 4 पर। कल हमने मंगलाचरण के बाद और 2 श्लोक भी देखे थे। यहाँ बात अनादि अविद्या की चल रही है। अविद्या ने अज्ञान जो अनादि से ही चला आ रहा है उसी की बात यहाँ बताई थी हमें कि स्त्री पुत्रादि को नित्य मानता है, वो उनको अपने मानता है, शरीर को शुचि मानता है, परद्रव्य जो संयोग रूप है वो कायम टिकेंगे मानता है, आदि जो उसकी अनादि की अविद्या चल रही है इस कारण यह मूड बन रहा है। यहाँ तो बताया था कि वास्तविक शरीर घर धन स्त्री आदि जो है वो सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले और यह मूड उनको अपना मानता है। ये बात इष्टोपदेश से ली गई थी जो 4 नंबर के पृष्ठ पर उसका श्लोक बताया। देखो ऊपर, वपुर गृहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रव सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़स्वानि प्रपद्यते। वपु यानी शरीर, घर, धन, दारा का अर्थ मालूम है स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु, ये सभी अन्य स्वभाव वाले हैं और यह मूढ़ उनको अपने मानता है। ये बात पहले हमने 3 पेज पर पढ़ी थी, मूढ़ इन सबको अपना मानता है। अब उसके लिए ये बात चल रही थी अपनी। अब पेज नंबर 3 पर हम चार नंबर पेज पर हम आए हैं। बात ये हो रही कि मिथ्या तो सहित राग को ही राग गिना है, कि सम्य दृष्टि को राग नहीं होता तो कहते होता है चारित्र मोह, क्योंकि वो अनंतानुबंधी वाला राग नहीं है तो अनंतानुबंधी राग वाले को ही राग कहा। हमने समय सार में ये अपेक्षा देखी है। वैसे समय दृष्टि को बंद ने ऐसा भी कहीं कहीं कथन आता है तो मुख्यतः मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के कारण होने वाले राग को और वहां उसके बंध को राग और बंध गिना है। यही बात और भी आगे उन्होंने रेफरेंस दिए है 4 नंबर की पृष्ठ में। हाँ आपका प्रश्न है।
समय दृष्टि के ज्ञान वैराग्य शक्ति का अवश्य होना का।
हाँ देखो, ये कहते हैं समय दृष्टि के ज्ञान और वैराग्य शक्ति नियम से होती है। वैराग्य ने राग रहितपना, इस तरह से वैराग्य उन्होंने लिया तो ये समय सार का उन्होंने बताया कलश। समय दृष्टि को ज्ञान और वैराग्य शक्ति नियम से होती है तो क्या उसके राग नहीं होता, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। यह उसका उदाहरण भी दिया। देखो ये ऊपर से आप 5वीं लाइन की बात पूछ रहे हैं ना, 3 नंबर 4 नंबर के पृष्ठ पर ऊपर से 5वीं लाइन।
हाँ
अच्छा, भावार्थ में पंडित जयचंद जी साहब ने कहा है उसी के भावार्थ में, कौन से वो कलश 136 में, उसके भावार्थ में कि मिथ्यात्व के बिना चारित्र मोह संबंधी उदय के परिणाम को यहाँ राग नहीं कहा, यहाँ यानी यहाँ इस गाथा में, इस श्लोक में। इसलिए सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग्य शक्ति का अवश्य होना कहा है, यानी वो रागी नहीं है ऐसा कहीं, उनके राग नहीं है, ज्ञान और वैराग्य है ऐसा कहीं, राग बिना वाला, यानी मिथ्या तो सहित राग को ही राग कहा गया है, वह सम्यक दृष्टि के नहीं है। ये बात क्या नहीं,
हाँ
हाँ ना, सम्यक तो नहीं होता, नहीं ऐसे वो आत्मानुभूति नहीं होती ऐसा कहते हैं अभी। हाँ सम्यक तो जो मानते हैं ना वो तो व्यवहार श्रद्धा को ही वो सम्यक तो मानते हैं, बस हमने इन्हें वहाँ आत्मा की अनुभूति होती है, आत्मा में लीनता, शुद्धात्मा अनुभूति को नहीं मानते हुए। ऐसा कहने वाले हैं कि चौथे गुणस्थान में आत्मा की अनुभूति नहीं है परंतु सम्यक्त्व है, तो उनको सम्यक्त्व का वो लक्षण क्या बताते हैं जिसको हम व्यवहार सम्यक्त्व कहते हैं, सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा है, बस श्रद्धा ने विश्वास है, विश्वास है क्या, हमने मान लिया, पर ये विश्वास नहीं कहलाता। सम्यक दर्शन सही श्रद्धा आत्मानुभूति पूर्वक होती है तभी उसको सम्यक दर्शन नाम दिया जाएगा, पहले उसने केवल आगम से जाना है और बस उस पर उसके हाँ ये ऐसा होता है इतना आस्तिक के भाव है, बस इतना ही बात।
बराबर
बस सही है, वो नहीं मान रहे आत्मानुभूति को, नहीं मान रहे हैं।
हाँ। बताया जा रहा है कि ज्ञान मिथ्या को के बिना, यानी उस जीव को सम्यक्त्व तो है, मिथ्या तो नहीं है तो क्या है, सम्यक्त्व है, लेकिन वहाँ चारित्र मोह संबंधी के हृदय के परिणाम जो है तो उनके होते हुए भी उसको यहाँ राग नहीं हुआ,
उसको गिना नहीं गौण करके
उसको वाला राग मान रहे हैं, इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञान में है, वैराग्य वैराग्य ने सब में स्थिरता में जितनी शक्ति है वो अवश्य होती ही है, होना कहा
वितराग शक्ति जो है, वितरागता वाली शक्ति, ज्ञान और वितरागता वैराग्य में उसको लेना, उसमें हाँ वो स्मशान वैराग्य वाली बात नहीं है, वितरागता ही लेना। हाँ अभी उसी के लिए वो और भी आगे कहते हैं, हाँ आगे कह रहे हैं, देखो मिला बीच में ही आगे समय सार गाथा 201 202 के भावार्थ में कहा है, अविरत सम्यक दृष्टि आदि के, आदि यानी चौथे पांचवे आदि के चारित्र मोह के उदय संबंधी राग है वह ज्ञान सहित है। मिथ्या दृष्टि का तो राग था और वो ज्ञान और राग का भेद उसको पता नहीं था, उसमें विवेक नहीं था कि ज्ञान भिन्न है और राग भिन्न है, दोनों को मिला हुआ जानता मानता था, यानी अपने को राग रूप मानता था, कुछ राग वेश के परिणाम नहीं करने योग्य मानता था, कुछ करने योग्य, उसी में वो हे उपादेय करता था, कुछ करने योग्य राग है और कुछ छोड़ने योग्य राग है। तो कहते हैं अविरत सम्यक दृष्टि आदि के जो चारित्र मोह के उदय संबंधी राग है वह ज्ञान सहित है, उसको रोग के समान मानता है, एक तो उसको भिन्न जानता है और जो उठ रहा है उसको तो कुछ अच्छा नहीं मानता है, जैसे रोग हम नहीं चाहते हुए भी आता है उसका इलाज भी करता है, वैसे इनके ऐसा राग आता है यथा योग्य उसका इलाज भी चलेगा उनका, फिर भी वो उसको अच्छा नहीं, उसका राग का राग नहीं उनके, उस राग के साथ राग नहीं, स्वामी जी हमेशा कहते राग का राग नहीं है। कर्मोदय से जो राग हुआ है उसका मेटना चाहता है, उसको मेटना चाहता है, मेटना चाहते नहीं, वो तो उठ रहे को अपने से भिन्न जानता है और आए हुए का उसके स्वामित्व नहीं है। इन्हीं दोनों गाथाओं की टीका में ये हमने नीचे की गाथा भी पढ़ी थी कलश है ना, तो इन्हीं दोनों गाथाओं की टीका में जैसेनाचार्य ने भी रागी सम्यक दृष्टि नहीं होता इस चर्चा को लेकर शंका समाधान किया है। शंकाकार कहता है आपने कहा कि रागी सम्यक दृष्टि नहीं होता, तो यानी शंकाकार पूछ रहा है तो चतुर्थ पंचम गुणस्थानवर्ती तीर्थंकर यानी तीर्थंकर का जीव जब गृहस्थ अवस्था में है तब की बात करते हैं। भरत सगर, ये भरत कौन थे? भरत चक्रवर्ती, और सगर भी चक्रवर्ती का नाम। राम पांडव आदि क्या सम्यक दृष्टि नहीं थे? ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि वे भी रागी हैं, उनके तो हमें पता है ना, प्रथमान युग में उनकी तो कहानियां कथाएं हमने सुनी है, तो हमारे आप जैसे तो उनके भी राग द्वेष के परिणाम होते हुए हमने पढ़ा है। इसके समाधान में आचार्य कहते हैं उनके मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा 43 विज्ञापन वो 47 चाहिए, 47 क्योंकि देखो चारों गति की अपेक्षा सामान्य से चौथे गुणस्थान वाले के 41 कर्म प्रकृति उनके बंधे हुई चित्ती ऑलरेडी हो चुकी है। मनुष्यों के लिए 47 आवाज आ रही है, हाँ मनुष्यों के लिए तो 47 याद है कि भूल गए बंधु इच्छुती, हाँ अश्विन नहीं नहीं हमें तो पूरी 47 चाहिए। हाँ मिथ्या तो की 25 आप बताएंगे, बोलो बोलो नहीं मिथ्या तो की 16 है और वो दूसरे की 25 एक केंद्रीय स्थावर आता पहले का जरा धीरे से सूक्ष्म साधारण पर्याय नरक ये 16 हुई पहले गुणस्थान के बंधु इच्छित्ती वाले। अब दूसरे गुणस्थान की 25 गिना आएंगे कौन आप? हाँ हाँ
चार संस्थान चार
सहन ऐसे डायरेक्ट। अच्छा हाँ नहीं नहीं आप अपने क्रम से बताओ।
हाँ
सब उल्टा पुल्टा कर दिए। देखो मैं बताती हूँ अनंत आनुबंधी आप बता रहे अच्छा ये ट्राई कर रहे हैं चलो अच्छा है। नहीं नहीं अरविंद भाई बोल रहे हैं
अनंतानुबंधी क्रोध मान माया निद्रा निद्रा पटना पटना चार संस्थान
निग्रोध परिमंडल
स्वाति
वामन
चार स्वर्ण वज्र नाराज
नाराज अर्ध नाराज किले
तीन ये दुर्भक ईश्वर अनादेय और तीन में निज गोत्र स्त्री बेल और अप्रशस्त
बरोबर। तो ये हुए 25 बहुत अच्छा। तो ये तो सामान्य से चारों गति की अपेक्षा तो बताते हैं, मैं तो मनुष्य और तीरंज के लिए क्योंकि मनुष्य तीसरे चौथे गुणस्थान वाला देवगति बांधेगा ऊपर भी, तो उनके लिए मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी औदारिक औदारिक अंगोपांग वज्रषभ नारा सहन और मनुष्यायी ये 6 प्रकृतियों भी उनके नहीं बंधेगी, इसलिए 47 कर्म प्रकृतियों का बंधन न होने से 47 करो 47 क्योंकि 43 किसी अपेक्षा नहीं होते या तो 41 बिकते या 47 तो 47 बराबर। आप कुछ कहें सारे मनुष्य है ना, मनुष्यों की अपेक्षा कहना है देवों की अपेक्षा कहना होता तो हम 41 कहते हैं। वहाँ तो और 10 प्रकृति उनकी बंधु विच्छित हो जाएगी। अभी 10 में से तो हमने 6 यहाँ गिनाए।
चार
मेहनत से जुड़ा था 43 में दो आज जुड़ा था मैंने आपको बताया था शिफ्ट देती
है। देखो तो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा हम उसको 47 पढ़ेंगे। 47 कर्म प्रकृतियों का बंधन न होने से चतुर्थ पंचम गुण स्थान वर्ती जीवों के अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व के उदय से उत्पन्न होने वाला पत्थर की रेखा आदि के समान राग आदि का अभाव होता है। ये पत्थर की रेखा क्या होती है? हाँ, जैसे हमने भेद देखे थे याद है त्रोल, हाँ शिला भेद, पृथ्वी भेद, धूली रेखा, जल रेखा आदि हमने भेद देखे थे। तो यहाँ शिला भेद वाला लेना, यहाँ पर पत्थर की रेखा नहीं शिला भेद, ये तो क्रोध के हुए, हरेक में होगा क्योंकि क्रोध मान माया लोभ हरेक के जो तीव्र परिणाम है अनंतानुबंधी वाले उसमें भी मैक्सिमम टॉपमोस्ट ऐसे अति तीव्र वाले। तो क्रोध में तो हमने कैसे भेद किए थे? चार भेद, शिला भेद, फिर पृथ्वी भेद, धूली रेखा और जल रेखा, ये तो क्रोध के हुए थे। तो उन्होंने पत्थर की रेखा आदि में, वो तो क्रोध आदि में, तो मान में तो शैल, अस्थि, काष्ठ और वेत, वेत यानी लता, वेत वेत लता भी नहीं, वो वेत वाली, उसके ये उपमा देके समझाए थे। माया में वो वेणु या मूल, वो बांबू होता है ना, उसका जो मूल होता है वो ऐसा स्प्रिंग लाइक होता है, हाँ। तो वेणु ये मूल, दूसरा था उरभ्रक श्रृंग, वो मेंढे के ऐसे जो होते हैं ना, मेंढा मेंढा, हाँ उसके सींग जैसे होते हैं, उरभ्रक श्रृंग, फिर गोमूत्र यानी वो चलते हुए उसके जो ऐसे ऐसे तेरी, और क्षुर यानी खुर, उसका जो इम्प्रेशन होता है पैरों में, क्षुर क्षुर कहते हैं उसको, क्षुर खुर जिसको हम कहते हैं, खुर खुर यानी वो फुट इम्प्रेशन उनका जानवरों का। उरभ्रक श्रृंग, उरभ्रक मेंढे के सिंह, उरभ्रक श्रृंग लोक के लिए भी चार नाम है। ये अपना विषय हुआ था ना सारा, हाँ कषाय मार्गण में भी लिया था, कर्णानियोग में भी लिया था। कृमि राग पहला नंबर, दूसरा चक्रमल, तीसरा तनुमल और चौथा हरिद्रा राग। ऐसे चार चार नाम हरेक के बताए। जब कहेंगे शिला भेद आदि, आदि में हरेक का टॉप मोस्ट लेना, शिला भेद पृथ्वी भेद, वहाँ भेद भेद कहा है और बाकी रेखा रेखा कहा है, धूली रेखा, जल रेखा। ये कैसे उसका वर्णन आता है कि बहुत घने काल गए बिना नहीं मिटता, वो पहले नंबर का, कि बाद वो क्षमा रूप हो जाएगा, यानी उस पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति वो क्षमा भाव रूप नहीं प्रवर्त, कभी याद आए तो वो नहीं देख लूंगा उसको ऐसे सालों बाद भी।
लोभ में चौथा क्या कहा आपने?
लोभ में हरिद्रा राग, हरिद्रा राग, राग है ना कलर, हरिद्रा यानी वो हल्दी का, देखो यहाँ क्या कहते, फिर पढ़ेंगे हम इसको, हमें यानी बहुत घने काल बिना, अभी क्रोध है वो क्षमा रूप नहीं प्रवर्तन रहा है, मान है वो विनय रूप नहीं हो रहा है, ये अकड़ नहीं जा रही है, माया है वो सीधा सरलता रूप नहीं परिणमित हो रहा है, बहुत घने काल बिना ये शब्द है, और लोभ है वो तो लोभ रहित पना ले लेना वहां पर। दो नंबर के है जो सारे हमने देखे, हरेक के दो नंबर के, वो घना काल गए बिना नहीं मिटते, पहला बहुत घना काल, दूसरे में घना काल गए बिना नहीं मिटता, तीसरा है थोड़ा काल गए बिना नहीं मिटते, और चौथा बहुत थोड़ा काल गए बिना नहीं मिटता। चौथा ने वो जो अंतर्मुहूर्त वाला है वो तो अभी उत्पन्न हुआ और थोड़े काल में मिट गया। हरिद्रा राग है, जल रेखा है, वो तो मुख्यतः क्रोध के जो चार नाम है उसको लेकर समझाने की पद्धति है, परंतु हरेक के अपने अपने नाम अलग अलग है। इन्हें वो कर्वेचर समझाना है ना, वहां पर जैसे स्प्रिंग है तो कितनी, ऐसे मायाचारी वाले के परिणाम समझाने, ये सारे उदाहरण के ने उपमा देके नाम समझाए उसके। अब यह हम पढ़ रहे हैं नीचे से, पत्थर की रेखा आदि के समान राग आदि का अभाव है। राग आदि का इन्हें क्रोध मान माय लोग सब लेना, यानी राग द्वेष। पंचम गुण स्थान वर्ती जीवों के, पहले तो अनंतानुबंधी की बात है, वो अनंतानुबंधी नहीं है। अनंतानुबंधी नहीं है मैं चौथे पांचवे दोनों लिया, अकेले पांचवे की बात की तो अप्रत्याख्यान नहीं है वो बात की। पंचम गुण स्थान वर्ती जीवों के अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ के उदय से उत्पन्न होने वाले पृथ्वी की रेखा, ऊपर पत्थर की रेखा लिखा था, यहाँ पृथ्वी की रेखा आदि के समान राग आदि का अभाव होता है। इन्हें पृथ्वी के रेखा क्रोध में लेना, मान में अस्थि, माया में उरभ्रक श्रृंग और लोभ में चक्रमल। चक्रमल समझते हैं ना? नहीं, अच्छा आप समझते हैं कौन सा चक्र? गाड़ी के पहले के जमाने में बैलगाड़ियां चलती थी ना, वो नहीं है चक्रमल। मल है क्या? हाँ, वंगन जिसको कहते हैं, आज के काल में वो ग्रीस डालते हैं ना। पर वो काला होता था ना उसके अंदर, उसका रहा। हाँ,
देखो पहले के जमाने में ऐसा बांबू रहता था, उसको अंदर से कोड़ा कर देते थे और उसके अंदर वो रखते थे, जब जब गाड़ी खींचने चले उसके अंदर एक लकड़ी डालनी हुई थी, वैसे उठा के वो चक्कर के बीच में डालते थे।
जैसे हम ऑयल डालते हैं मशीन में वैसे लुब्रिकेंट, परंतु वो तो घिसने के कारण वो काला हो जाता है। हाँ वैसा वैसा, जल्दी नहीं निकलता, घने काल बिना गए बिना नहीं निकलता। तो इसके वैसे रागादि का अभाव है इस ग्रंथ में, वो तो अनंत, वो तो इसके समान लेना, शिला भेद समान, किरमी जो रानी कलर ऐसा होता है जाते नहीं, वो क्रिमी राग, क्रिमी राग जाता नहीं, मगर वो कपड़े से नहीं निकलता। और दूसरा भी उसका हमने जयधवला में पढ़ा था शायद, क्रिमी राग नाम के वो कुछ रेशम के। हाँ हाँ, वो कलर वो जाता नहीं है ऐसा। इस ग्रंथ में पंचम गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थानों में रहने वाले वीतराग समय दृष्टियों का मुख्य रूप से ग्रहण है। जब समय दृष्टि कहेंगे तो ज्ञान वैराग्य की शक्ति मुख्यतः मुनियों की अपेक्षा बताएंगे, और सराग सम्यक दृष्टियों का, देखो सम्यक दृष्टि यानी सम्यक दर्शन सराग नहीं होता है, परंतु वो सम्यक दृष्टियों के अभी राग बाकी है उसको सराग का, और जहां राग गौण रीति से है बस हीन रूप है संज्वलन का चल रहा है, और वहां उनको वितराग समय दृष्टि कहने की पद्धति, परंतु सम्यक दर्शन सेल्फ तो वितरागता के साथ ही होता है।
ऐसा क्यों लिखा इन ग्रंथ में पंचम गुण स्थान से, माने पंचम गुण स्थान को भी इंक्लूड किया, ऊपर बताया चार और पांच अलग है,
नहीं छह ऊपर के,
छह ऊपर के,
अच्छा, उसको छोड़ दो, हम हमारी हिंदी में हम के ही लिख रहे हैं, वहाँ उससे लिखे उससे ऊपर के
नहीं
नहीं
किया, चार पांच
वितरा वितरा है ना, बस होने दो ना। परंतु धर्मामृत इटसेल्फ जब समय दृष्टि कहेंगे तब ऊपर के गुणस्थानों की अपेक्षा वहां राग नहीं है, ऐसी मुख्यता उसका कथन है, ये बात बताना चाहते हैं। ये ग्रंथ तो एक ही ऐसा, अभी इसका दशम अध्याय नाम दिया, इसलिए इस ग्रंथ में कहने से धर्मामृत ग्रंथ में की बात चल रही। यह व्याख्यान समय दृष्टि के कथन में सर्वत्र जानना, ये राग की मुख्यता नहीं है। जब समय दृष्टि की बात करेंगे तो वो राग को गौण करके बात करेंगे, बस ये बात है। और हमने तो स्वामी जी का इतनी बार सुना है, पढ़ा है, तो हमें तो ये अपेक्षा अच्छी तरह से मालूम है। उनके राग को गौण करके अनंत अनुबंधी के राग को राग कहा है, बाकी तो उसको नहीं, उसके बंध को भी नहीं गिना है। इस तरह अविरत सम्यक दृष्टि को भी जो ऊपर ग्रंथकार ने विषयों में मग्न कहा है वह अपेक्षा भेद से ही समझना चाहिए। यानी विषयों में अभी उससे वो हटा नहीं है, परंतु वो रुचिपूर्वक है उसमें, ये रचा पचा नहीं मिथ्या दृष्टि जैसे। उसके अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होने से विषयों से निवृत्ति का भाव नहीं होता। अभी उसमें अटका है परंतु वो अच्छा नहीं समझ रहा है, यद्यपि यह जानता है कि विषय है यह, तथापि कर्मोदय से प्रेरित होकर भोगता है। ये कर्म जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, उसके अपनी कमजोरी है, अभी उससे वो हट नहीं रहा है, इन्हें हटा नहीं है बस। बिल्कुल, क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण का उसी को उदय है। और ये बात, ये देखो, ये सारा विशेषार्थ हम पढ़ रहे हैं। मूल में तो वहाँ कुछ श्लोक है ओरिजिनल, संस्कृत टीका उन्होंने स्वयं पंडित आशाधर जी ने लिखी है, और उन्होंने कुछ उद्धरण भी अन्य ग्रंथों के दिए हैं। फिर भी उसके, जिसको हम कहें ना तात्पर्य कहो या विस्तार से, उन्होंने विशेषार्थ में बता दिया। अब यहाँ आते हैं पांच नंबर के पृष्ठ पर। इस प्रकार सागारों का लक्षण कहकर, सागार किसको कहना, तो हमने देखा तो गृहस्थ को कहा, वो अनादि अभी भावघर कहा था। अब उनकी विषयों में प्रवृत्ति होने और नहीं होने के मूल कारण जो अज्ञान और ज्ञान है, यानी क्या, विषयों की प्रवृत्ति होने में मूल कारण अज्ञान है और नहीं होने में मूल कारण ज्ञान है। उस अज्ञान और ज्ञान के बीज मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, अज्ञान का बीज मिथ्यात्व और ज्ञान का बीज सम्यक्त्व, उसके प्रभाव को कहते हैं। यानी उसका, उसके कारण क्या होती है बातें वो बताएंगे। देखो ऊपर भी लिखा है, वो जो चार नंबर का श्लोक है ना उसके ऊपर लिखे, अथ विद्या विद्ययोहो, यानी विद्या अविद्ययोहो द्विवचन दोनों में, विद्या और अविद्याओं के बीजोपदेशार्थम आह, उसके बीज का उपदेश, उसका मूल कारण क्या है उसको यहाँ बताने जा रहे हैं। नरत्वेपि पशुयन्ते मिथ्यात्व ग्रस्त चेतस, पशुत्वेपि नरायन्ते सम्यक्त्व व्यक्त चेतना। देखो अभी पशु यानी मनुष्य होने पर भी पशु है, पशुत्व है, कौन है, देखो नरत्वेपि यानी नरत्व होने पर भी, मनुष्यपना होने पर भी पशु यंते यानी पशु जैसे है। पशु यंते का नीचे अर्थ दिया है श्लोक के नीचे, हिताहित विवेक विकलतया पशु इव आचरंती, हित और अहित के विवेक का अभाव होने से पशु के समान आचरण करते हैं, कौन, मनुष्य। तो मनुष्य होने पर भी पशु समान आचरण करते, कौन से ऐसे मनुष्य, ये कहते मिथ्यात्व ग्रस्त चेतस, मिथ्यात्व से जिनके ग्रसित हो गए, चित्त ग्रसित हुआ, ऐसे मनुष्य है फिर भी पशु समान आचरण करते हैं। और आगे कहते पशुत्वे भी नरायन्ते, जैसे यहाँ पशु यंते कहा वहां नरायन्ते, यानी पशु होने पर भी मनुष्य समान आचरण करते हैं, वे कौन है, सम्यक्त्व व्यक्त चेतना, जिनके सम्यक्त्व व्यक्त हुआ है, सम्यक्त्व चेतना वाले जो है, यानी सम्यक्त्व जिनकी चेतना जो है सम्यक दर्शन के द्वारा वो व्यक्त हुई है, वो पशु होने पर भी मनुष्य समान है। अब उनको हम नीचे अर्थ देखते हैं। जिनका चित्त मिथ्यात्व से ग्रस्त है, वे मनुष्य होते हुए भी पशु के समान आचरण करते हैं, और जिनकी चेतना सम्यक दर्शन के द्वारा प्रतीति के योग्य हो गई है, अर्थात सम्यक दृष्टि जीव पशु होते हुए भी मनुष्य के समान आचरण करते हैं। मनुष्य के समान यानी वो तो चूल्हे पर रोटी सेक के खाएंगे क्या क्या आचरण में हमने दो पैर पर चलना, हाथ से रोटी, ये आचरण नहीं है। हाँ, तो उनके हिताहित का विवेक हो जाएगा, और वो हिताहित का वो भी हम देखा मोक्ष मार्ग संबंधी, नहीं तो ऐसे हम हिताहित का ही सोचते रहते हैं दिन रात, वो लौकिक हिताहित की बात नहीं है। देखो ये विशेषात पढ़ने के पहले ऊपर देखते हैं, यदा हुई लिखा है ना, उन्होंने जो उद्धरण का जो श्लोक दिया है, आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्यमेतत् पशुभिर् नराणाम् ज्ञानम् नराणाम् अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। यानी आहार निद्रा भय और मैथुन, ये क्या है? चार संज्ञा है। वो कहते हैं ये सामान्य मेतत, ये सभी सामान्य है, किसके लिए? कॉमन है। पशु भीर नराणा, पशुओं में भी और मनुष्यों में भी ये तो समान है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो, मनुष्यों में तो ज्ञान की विशेषता है, ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना, और जो ज्ञान से हीन है सही ज्ञान से वो तो पशु के समान है, क्योंकि पशु में भी चार संज्ञा और इनमें भी चार संज्ञा, तो दोनों में डिफरेंस क्या रहा ये बात बताते, इसलिए मनुष्य होने पर भी पशु कहा। अब हम विशेषार्थ पढ़ेंगे। हाँ, यानी केवल सामान्य यानी सूक्ष्म ज्ञान की इनका नहीं लेना है, हाँ, ये आत्मज्ञान हो गया, आत्मज्ञान कहो या हिताहित का विचार कहो, जो यहाँ हम शास्त्र संबंधी ज्ञान कहते हैं उसकी बात वो भी ले सकते। ज्ञान तो अधिक है, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि भी होगा तो भी हिताहित का विवेक अधिक नहीं है, तो उसको पशु के समान। देखो विशेषार्थ, पशुओं को हिताहित का विवेक नहीं होता और मनुष्य प्राय विचारशील होते हैं। मिथ्या तो कहते हैं विपरीत भाव को, अर्थात जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वैसा न मानकर उससे उल्टा मानना विपरीत अभिनिवेश है। अभिनिवेश है अभिप्राय, मान्यता, इसे ही मिथ्यात्व कहते हैं। अतः मिथ्या दृष्टि मनुष्य, मनुष्य होते हुए भी हित अहित के विचार से शून्य होने के कारण पशु के समान आचरण करते हैं। आगे क्या बताते हैं? लोक व्यवहार में दक्ष होते हुए भी आत्मा के हिताहित का विचार उन्हें नहीं होता, यानी लौकिक हिताहित का विचार नहीं होता, ही नहीं कहा। आत्मा संबंधी आत्मा का हित किस में है और अहित किस में है इसका विचार ही नहीं करते। कोई सुना नहीं जाता है तो वो भी सुनने के लिए राजी नहीं, ये आत्मा फात्मा हमें कुछ नहीं जानते, आत्मा होता तो दिखता नहीं कि हमें ऐसा कहेंगे। तो कहते लौकिक व्यवहार की बात नहीं है, लौकिक हित अहित की बात की यहाँ बात नहीं है, उसमें तो दक्ष है। जैसे आने जाने वालों का कैसा रखना, घर में कैसे रखना, बाहर कैसे बिहेवियर करना, पैसे के लेन देन सब एकदम टोका। तो कहते लोक व्यवहार में दक्ष होते हुए भी आत्मा के हित अहित का विचार उन्हें नहीं होता, इसके विपरीत विशेषांत कैलाश चंद्र जी शास्त्री हो गए ना पहले, हाँ सिद्धांताचार्य सिद्धांत शास्त्र सिद्धांताचार्य हाँ वो ज्ञान दीपिका संस्कृत पंजिका तो उन्होंने आशा दर्जी ने लिखी। हाँ आशा दर्जी ने अपनी टीका लिखी बराबर हो क्योंकि हिंदी में अनुवाद के बराबर बराबर हाँ हुए होंगे क्योंकि क्या है ये बगेरवाल समाज जब आके कारंजा वगैरह में बसा ना वहाँ के चित्तौड़गढ़ उस एरिया के हैं और ये आशादर जी वहाँ रहने वाले अजमेर वगैरह वहाँ के यानी जैसे हम महाराष्ट्र में आए ना मूल गुजरात इडर चोरीवार वो बाजू के और यहाँ माइग्रेट हुए वैसे ये सारा समाज वहां से माइग्रेट हुआ है। महाराष्ट्र में 5 गांव में बसा था अभी थोड़ा फैल के कहीं कहीं अन्यत्र भी है वो बगेरवाल समाज के है ये आशादर जी ये अपने मानिकचंद चौरे अपने सुना होगा कारण
हाँ
वो समाज अभी बीसीकर है धन्य कुमार भोरे है वो सारे उस उनमें अच्छे अच्छे सारे बहुत सारे अच्छे और इनकी विशेषता है कि उनके जमाने में भट्टारकों की बहुत बहुत अधिक उनका उनका ही साम्राज्य चल रहा था सर उनका वचन चल उनका शासन जैसे चल रहा है फिर भी इन्होंने इनका अभ्यास इतना था केवल आगम का ही नहीं अध्यात्म का भी उतना ही था और उसका समन्वय भी उतना ही उन्होंने साधा तो कितने भट्टारक भी इनके शिष्य थे इनसे पढ़े हुए हाँ मुझे वही हाँ हाँ क्योंकि भव्य कुमद चंद्रिका देखो ये बात प्रस्तावना में लिखी है तीसरी लाइन में प्रस्तावना की भव्य कुमद चंद्रिका टीका ये स्वयं इनकी टीका है आशा दर्जी ने टीका लिखी है और दूसरी है ज्ञान पंजिका टीका कुछ है ज्ञान दीपिका संस्कृत पंजिका संस्करण किया उन्होंने इन्हें ये उन्होंने ज्ञान दीपिका देखो नीचे से दूसरी तीसरी लाइन में ज्ञान दीपिका उद्धरण बहुल है यानी उन्होंने बहुत सारे उद्धरण दिए हैं यानी रेफरेंसेस दिए हैं तो जिन उद्धरणों का आधार मिला उन्हें मूल के आधार पर शुद्ध किया जिनका आधार नहीं मिला वो शुद्ध करने की कोशिश करके छोड़ी यानी कभी कभी ब्रैकेट में उन्होंने कुछ नहीं लिखा है जहां उनको जैसे 5 नंबर के पेज पर देखो अभी जो हमने आहार निद्रा भय मैथुन आदि देखा उसका कुछ कौन से ग्रंथ में से लिया है वो उनको नहीं मिला तो उन्होंने छोड़ दिया मैंने हाँ 8 में नीचे है ना
शास्त्र पंडित आशा
टीका सागर धर्मामृत की भव्य कुमुद चंद्रिका टीका विक्रम संवत 1296 नल कच्छपुर के नेमी जनालय में रचकर पूर्ण हुई। तद उसके पश्चात 1300 में अनगार धर्मामृत पर भी भव्य कुमुद चंद्रिका टीका रची गई। इसके पश्चात ज्ञान दीपिका के पश्चात भव्य कुमुद चंद्रिका रची गई, यानी उन्होंने दो दो टीकाएं रची है।
अभी
1467 चल रहा है और अभी 1500
वेरिएशन
आता
है ना। 1400
समथिंग होगा ना, संवत
1536
लिखा है।
अच्छा
अच्छा 1296
हाँ
ना। उसमें से माइनस करना पड़ेगा, 1296 में से 56 माइनस करो, 1240 हो जाएगा। ईस्वी सन इतने साल हो गए, वही तो 800 समझो ना,
800 हमने ये नहीं देखा था क्या अभी कौन सा, क्यों मैं लिख के जा रहा हूँ, ये पढ़ने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है।
वो तो दीपचंद जी ने लिखा था,
दीपचंद जी काशी वाले
चलो चलो आगे निकलेंगे। देखो हमने ये देखा कि लोक व्यवहार में दक्ष होते हुए भी आत्मा के हित हित का विचार उन्हें नहीं होता, ये मुख्य बात यहाँ है, यानी मिथ्या तो है तो पशु के समान है। इसके विपरीत सम्यक से जिनकी चेतना व्यक्त होती है, चेतना व्यक्त हुई नहीं, वो भी अभी ज्ञान में पढ़ने के अनुभव चल रहे हैं ना उनके, वे जाति से पशु होते हुए भी मनुष्यों के समान हित अहित के विचार में चतुर होते हैं। आचरण करते का अर्थ क्या है, हित अहित के विचार करता, अर्थात सम्यक्त्व के महात्म्य से पशु भी हेय और उपादेय तत्व के ज्ञाता हो जाते हैं, यानी वो राग हेय है वो सब उसमें चलेगा, सातों तत्वों का जैसा स्वरूप है उसका भाव भाषण उनके है, वैसे विचार भी है, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय है ना वे भी और समय दृष्टि है। तो कहते पशु भी है ये उपादेय तत्व के ज्ञाता हो जाते हैं, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है, यहाँ पशु से संगी ही लेना चाहिए, यानी संगी पंचेंद्रिय, क्योंकि समय दर्शन संगी पंचेंद्रिय जीवों को ही होता है। आगम में कहा है कि भव्य पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव कालादि लब्धि के होने पर, यानी काल लब्धि आदि के होने पर, जब उसके संसार परिभ्रमण का काल अर्धपुद्गल परावर्त प्रमाण शेष रहता है, तब यानी उसको अर्लीएस्ट समय दर्शन कब होगा, मोक्ष के अर्धपुद्गल परावर्तन पहले, एक परावर्तन बाकी है तो नहीं हो सकता, तो उसने पुरुषार्थ किया तो होगा कि नहीं होगा। तो उसके पांचों समय वैसे ही हो गए, जिस प्रकार के उसके जो होनहारे वैसे ही उसके सब पर्याय चलेगे, वैसे ही पुरुषार्थ होगा। इसको कालादि लब्धि कहा, यानी अन्य भी उसके जो कारण है वो सब उसमें ले लेना, यानी केवल काल लब्धि आई इसलिए होगा ऐसा भी नहीं है, अर्धपुद्गल परावर्तन बाकी इसलिए समय दर्शन होगा ही होना ही चाहिए वो भी बात नहीं है। किसी को हो सकता है अनादि से मिथ्या दृष्टि है, और अभी मान लेते कि मानो ना 10 साल के बाद मोक्ष होना है तो उसको समय दर्शन हो सकता है, सकता है पहली बार। सम्य दर्शन होगा फिर मुनि भी बनेगा, श्रेणी भी चढ़ेगा, मोक्ष भी हो जाएगा, अंतर्मुख भी हो सकता है। तो इतने लंबे काल से मान लेते हैं एकेंद्रीय, तो मनुष्य में नहीं आया तो अभी 10 साल बाकी है उसके मोक्ष के, और अभी वो निगोद में पड़ा है। आएगा ना, वो नक्की है। तो नहीं आएगा तो ऐसा कोई वहां प्रश्न ही नहीं होता, क्या नहीं? तो वो अंतिम भव है, तो वैसे प्रदेश सब कर्म भी वैसे बंधेंगे, सब यथा योग्य होगा ही। उसमें कोई ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता तो बात कुछ होती ही नहीं है। तो कहते यहाँ तो वो तो मैक्सिमम मैंने अर्लीस्ट कब हो सकता है, तो इतना इसलिए लिया। अर्धपुद्गल परार्थ प्रमाण शेष रहता है, तब एक अंतर्मूर्त में सम्यक होने के लिए कितना काल लगता है? एक अंतर्मूर्त। मिथ्यात्व ये दो निकाल देना यहाँ। अनादि मिथ्या दृष्टि उसके तीन प्रकृति नहीं है, तो मिथ्यात्व तथा अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के अंतरकरण रूप उपशम से सम्यक्त को प्राप्त करता है। यह हमें सबको मालूम है ना, अंतरकरण क्या होता है। दर्शन मुनि में अंतर किया जाता है, वो अनिवृत्तिकरण परिणाम में फिर क्या होता है। हाँ हाँ, मैं पहले बढ़ूंगी फिर सबको बताऊंगी। तो यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ तो तीन नाम लिखे हैं, परंतु मिथ्यात्व प्रकृति का ही बंध है, और अनादि मिथ्या दृष्टि जो है उसकी सत्ता में एक मिथ्यात्व प्रकृति ही है। तो वो जब उपशम करेगा तो किसका करेगा? मिथ्यात्व का ही करेगा। फिर उपशम सम्यक्त के काल में तीन प्रकृति बनेंगे, जो ऑलरेडी उपशमित है इस मिथ्यात्व, उसी में से तीन बनेंगे जो उपशमित रहेगी बाद में। इसलिए यहाँ जो लिखा ना, मिथ्यात्व सम्यक, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति तथा अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के अंतरकरण रूप उपशम। और दूसरी बात, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का अंतरकरण रूप उपशम नहीं होता, एक मिथ्यात्व का ही होता है। तो आप यहाँ दो निकाल देना, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये निकाल दो और पेंसिल से काट मारो उसको। कारण क्या है कि पहली बार मात्र मिथ्यात्व प्रकृति ही है और उसी में अंतरकरण रूप उपशम होता है। तो है ना, अभी अर्धपुद्गल पर उसी की बात चल रही है। आप साइड में लिखो, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि है, उसके एक मिथ्यात्व प्रकृति ही सत्ता में है, उसी में अंतरकरण करके उपशम करेगा। तो अभी हमें और एक वाक्य जोड़ना भी पड़ेगा। देखो, मिथ्यात्व तथा अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के, अब मिथ्यात्व में तो अंतरकरण रूप उपशम और अनंतानुबंधी में सदवस्था रूप उपशम। ऐसा भी इसमें तथा डाला ना ऊपर, मिथ्यात्व तथा अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ के अंतरकरण रूप उपशम तथा सदवस्था रूप उपशम से, तथा डालने से उसकी दोनों की बातें दोनों की अलग अलग सिद्ध होती है। सम्यक तो प्राप्त हो, आगे लिखेंगे उसको प्रथम उपशम कहते हुए, वो नहीं लिखा है, परंतु ये सम्यक को प्राप्त करते हुए प्रथम उपशम ही है। आपको अपने समझने के लिए लिखाना है तो तथा सदवस्था रूप उपशम से, अनंतानुबंधी के लिए सदवस्था रूप उपशम और मिथ्यात्व के लिए अंतरकरण रूप उपशम। अनंतानुबंधी में कभी भी अंतर नहीं पड़ता, चारित्रमों की 21 में अंतर होता है श्रेणी में, उपशम श्रेणी में, और ये मिथ्यात्व इनके ये तीनों में, दर्शन मुनि के तीनों में भी अंतर पड़ेगा। कब? एक बार समय को प्राप्त करके मिथ्यात्व में आया है और उन दो प्रकृतियों की स्थिति बहुत घटाई है, तब जाके तीनों में एक साथ अंतर हो सकता, वो सादी मिथ्या दृष्टि के होगा। यह सम्यक दर्शन आत्मा का तत्वार्थ श्रद्धा रूप परिणाम है। यानी कौन से गुण की पर्याय है, तो श्रद्धा गुण की। उसमें क्या हो रहा है, तत्वार्थ श्रद्धा रूप उसका परिणाम हो रहा है। इसके प्रकट होते ही आत्मा में प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक्य गुण आते हैं। ये गुण आते हैं ना, पहले जैसा ज्ञान गुण वैसा गुण नहीं है, यानी ये तो जिसको हम बाह्य में क्या उसके लक्षण दिखेंगे उसको कहेंगे, ये लक्षण कह सकते हैं उसको। सम्यक दृष्टि के बाह्य में क्या लक्षण है उसका अंदाजा हम ले सकते हैं ना। देखो क्या क्या बताए, प्रशम, प्रशम है ना क्या, अच्छा हम नीचे से पढ़ेंगे, हर एक को देखेंगे। तो चार कौन से प्रकट होते हैं,
प्रशम संवेग अनुकंपा और
आस्तिक्य। प्रशम संवेग अनुकंप और आस्तिक्य। अभी प्रशम किसको कहना, रागादि दोषों से चित्त वृत्ति के हटने को प्रशम कहते हैं। प्रशम है जैसे शांत भाव प्रकट होता है,
कषाय की शांतता।
हाँ कह सकते हैं। देखो नीचे उसको पहले एक नंबर डाला है ना, यद रागादिषु दोषेषु चित्त वृत्ति निवारणम तम प्राहु प्रशमम प्राज्ञा समन्तात् व्रतभूषणम। उसका तो अर्थ में अभी हमने देखा था, यानी रागादि दोषों से चित्त वृत्ति हट जाती है, उसमें चित्त नहीं लगता है, वो तो उससे पार। अब दूसरा संवेग किसको कहना, शारीरिक मानसिक और आगंतुक कष्टों से भरे संसार से भयभीत होने को संवेग कहते हैं। यानी संसार से भय और उसके विरुद्ध हमने कौन सा शब्द देखा था याद है, निर्भय। उसमें क्या लिया, धर्मानुराग। ये दोनों इकट्ठा ले सकते हैं, यानी धर्म के प्रति अनुराग और संसार के प्रति भीति भय, अस्थि नास्ति से संवेग और निर्वेग। उसके अपनी भाषा में कुछ भी बोलो, संसार से भयभीत, भव से भयभीत। देखो यहाँ शारीर मानसा गंतु वेदना प्रभवात भवात स्वप्नेन्द्र जाल, यानी स्वप्न और इंद्र जालवत, वो जो संकल्प होते ना इंद्रजाल समझते ना, इंद्रधनुष नहीं माया जाल, वो इंद्रजाल कहते हैं उसको। बुलबुलैया कहो माया जाल कहो, यानी जो कहेंगे, यानी सच्ची बात नहीं है सब, उसमें कुछ भ्रमित हो जाता है जी। ये जादू वगैरह करते वो क्या होते हैं, हिप्नोटिज्म, अलग ना अलग बात है। हाँ वो चला थी वही, हाँ वो इंद्रजाल माया जाती। स्वप्नेन्द्र जाल संकल्पात भीति संवेग, उनसे भय। यानी संसार का भय, तो संसार में इन सबको ले लिया, यानी केवल शारीरिक मानसिक और बाकी कष्ट हो गए तो ही भय लगता है, और अच्छे चक्रवर्ती के होगा, इंद्र होगा, उसको तो भय नहीं लगेगा कोई, तो उसको संवेग नहीं होगा। उसका तो होगा ही, सम्यक दृष्टि है, ये तो संसार से भयभीत है। आगंतुक यानी कोई आने वाला कष्ट, अचानक कोई कष्ट आ जाते हैं, जो पुण्य पाप के फल कैसे भी, कभी अभी अभी करोड़पति है और ऐसी कोई हो जाते, बिल्डिंग गिर गई, कुछ भी हो गया, तो ऐसे कोई कष्ट आ पहुंचते हैं अचानक। कच्छ में हमारे यहाँ पर भी बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी ना, नवरे बिल्डिंग, हो गया समय, अभी एक इतना पढ़ लेते हैं। सब प्राणियों के प्रति चित्त के दयालु होने को अनुपकंपा कहते हैं। यहाँ नीचे लिखा है सत्वे सर्वत्र, सत्व है ना, सत्वेषु मैत्री हम कहते हैं ना, सत्व ने प्राणी, प्राणी मात्र, सत्वे सर्वत्र चित्तस्य दयार्दत्वं दयालवः धर्मस्य परमं मूलं अनुकंपां प्रचक्षते। धर्म का परम मूल है, दया धर्म का मूल है कहते हैं ना, वो अनुकंपा वाली बात। मुक्ति के लिए प्रयत्नशील पुरुष का चित्त आप तो वीतराग देव, उनके द्वारा उपदिष्ट श्रुत व्रत और तत्व के विषय में ये ऐसे ही है, इस प्रकार के भाव से युक्त हो तो उसे आस्तिक्य कहते हैं। यानी भगवान ने बताया हुआ मार्ग कहो, उनके बताए हुए तत्व है, द्रव्य है, उनका स्वरूप है, सब कुछ है, उसमें भूगोल आएगा, गणित आएगा, सब कुछ आएगा, ये ऐसा ही है। हाँ, बाकी तो मानते, वो भूगोल में अभी मानने को तैयार नहीं है, ऐसा लगता है ना। इस प्रकार से भाव से उसके आस्तिक्य कहते। देखो नीचे लिखा है, आपते श्रुते यानी आप्त में, श्रुत में, व्रते तत्वे चित्तम अस्तित्व संयुतम, यानी ये ऐसे ही है, उसके एक तो अस्थि का भी स्वीकार है और जैसे बताया भगवान ने वैसा ही है, ये भी है। आस्तिक्यम अस्तिक ही रुक्तम युक्तम युक्ति धरेण वा, इसको आस्तिक्य कहा है किन्होंने, आस्तिक वालों ने और युक्ति धरो ने। सोमदेव उपासक अध्ययन ऐसा कुछ होगा, उसका पूरा नाम मालूम नहीं है, वो अनगार में सारे पुस्तकों की लिस्ट दी है, इसके फुल फॉर्म वहां से देख लेना, यानी इन्होंने किस किस का रेफरेंस लिया उसके पूरे के नाम बताए। इन गुणों से जीव को आत्मा की प्रतीति होती है और उसी से उसके भावों में यथार्थता आती है। इनकी चर्चा तो रत्नगण शावकाचार में भी हमने देखी थी, यहाँ चार बताए, इसी को आठ के रूप में भी बताते हैं। ये तो उसके लक्षण कहे जाते हैं समय दृष्टि के, जो बाह्य स्थूल रूप से उसको कहेंगे, यही रुकेंगे।
जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।